नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ. असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारू भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ. अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रूपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रूपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। IMD भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है, जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।